તારીખ 30/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 255 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 1
રચનામૃત પત્રાંક परम कथा श्री सौभाग्य भाई के ऊपर लिखा हुआ पत्र है। इस पत्र में पिताजी देव ने श्री सौभाग्य भाई की इच्छा के अनुरूप अपने अध्यात्म दशा का वर्णन किया है। लगभग एक साल पहले सुभाष भाई और दोनों आपस के परिचय में आए थे। गत साल के भादवे में वो परिचय में आए थे और ये आषाढ़ में मैंने लगभग एक साल होने जा रहा है। एक साल में आपस में अत्यंत आत्मीयता हो चुकी थी। आत्मीयता अत्यंत हुई थी, इसका सबूत है ये पत्र है। कैसे कि संसार में भी कोई अपनी संपत्ति जिसको मुड़ी कहते हैं, गुजराती में मुड़ी कहते हैं, मुड़ी संपत्ति, तो अपने आत्मीयजन को बताते हैं, हरे को नहीं बताएंगे। मेरे पास 8 लाख है या 50 लाख है या करोड़ है या कुछ है या नहीं है, वो बात घर के आत्मीयजन को बताई जाती है या मित्र कोई ऐसे आत्मीय हो, आत्मीयता वाले हो, उसको बताया जाता है। संबंधी भी बहुत आत्मीयता हो उसको ही बताएंगे, दूसरे को कोई अपनी संपत्ति बताते नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की जो अध्यात्म दशा होती है, ज्ञान दशा होती है, वो ही उनकी संपत्ति है, वही उसकी कमाई है। पुरुषार्थ से जो कमाई की है वो कमाई है, वो अपनी दशा है, तो प्रगत अध्यात्म दशा है। और उस विशेष चर्चा सभी से नहीं हो पाते, सबसे नहीं की जाते, पर विषय भी इतना गंभीर है, अध्यात्म दशा का विषय भी उतना गंभीर है, और जो उसको समझने लायक हो और समझने से उनके आत्मा को और लाभ का कारण होता हो, तब ज्ञानी अपनी दशा बताते हैं। सुभाष भाई अल्प परिचय में बहुत निकट आ गए थे, आपस में बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की पत्र में कि आपकी दशा कैसे रहती है हमें बताइए तो हमें बहुत आनंद होगा। ऐसे कुछ पत्र में जो बात चली है उस संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है। पत्र पत्र के प्रारंभ में कृपालु देव ने इस निष्कुलानंद का पद का उद्धरण किया है। निष्कुलानंद एक महात्मा निमित्त हो गए, जिन्होंने अपने ईश्वर की भक्ति बहुत किया है। तो जो लोग ईश्वर कर्ता में मानते हैं उसमें भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ईश्वर भजन बहुत बहुत अच्छे ईश्वर भजन किए हैं। यानी इसकी कल्पना में कुछ भी ईश्वर का स्वरूप हो परंतु ईश्वर माने ईश्वर, भगवान माने भगवान, उस भगवान को वो भगत भजते हैं तो बहुत लगन से भजते हैं, और अच्छे अच्छे पद की रचनाएं वहां भी देखी जाती है। उसमें से एक पद की रचना कृपालु देव ने उद्धरण किया है। कृपालु देव कोई भी पूर्व के महात्मा के पद या वचनों का उद्धरण करते हैं कभी बहुत रुचि पूर्वक करते हैं, ऐसे कभी भी कैसा भी लिख दे ऐसी बात नहीं है। वहाँ वही लिखना योग्य है, क्या ये बात यहाँ लिखनी योग्य है इसलिए लिखते हैं। जैसे डॉक्टर समझते हैं कि अभी ये गोली देना है, दूसरी गोली नहीं, ऐसी ही बात है। सुखना सिंधु श्री सहजानंद जी, जगजीवन तेजवंद जी, शरणागतना सुख कंद जी, परम स्नेहेश हो परमानंद जी, भगवान ने भगवान को कहते हैं कि आप तो सुख के सागर हो, महासागर हो, और सहजानंद स्वरूप हो। आप कैसे हो? सहजानंद स्वरूप हो और सुख के तो सागर हो, और ये सारे जगत के जीवन आधार हो। जगजीवन जगत के जीवन ही आप हो, आप नहीं हो तो जगत कैसे जिंदा रहे, और सारे जगत के वंदन के योग्य हैं। जगवंद जी सारे जगत के वंदन के योग्य हैं। आपके शरण में जो आते हैं इसके लिए तो सदा ही आप सुख के कंद हो, मैंने जो आपके शरण में आते हो सुखी 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 हो जाएंगे। आपके शरण में आने वाले कोई दुखी नहीं रह सकते। भगवान का शरण ग्रहे और दुखी रहे ये बात कैसे बनी नहीं सकती। और परम स्नेह को परमानंद जी, परम स्नेह के पीछे आश्चर्य चिन्ह लगाया कि स्नेह तो बराबरों बराबरियों के बीच में होता है, आपको परम स्नेह भी कैसे कहे? आप तो भक्ति करने योग्य हो लेकिन प्रेम करने योग्य भी हो, स्नेह मैंने प्रेम तो आश्चर्य करते हैं कि आपके प्रति हमें प्रेम हो गया। और आप तो हमारे परमानंद हैं, आप हमारे परम आनंद आनंद के धाम ही आप हैं। इसलिए ये पद का उद्धरण किया है कि कृपालु गुरु और सुभाष भाई के बीच में अल्प समय में बहुत प्रेम हो गया था। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है, प्रेम हो गया था पर बहुत बहुत हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत बहुत हो गया था। तो कृपालु देव ने ये लिखा कि परम स्नेही हो, आप तो हमारे परम प्रेमी हो, परम स्नेही हो। प्रेम में प्रेम के सिवा कोई संबंध नहीं है। बाहर में बताने के हेतु कोई भी बात बताओ, ये माँ बेटे का प्रेम है, ये पति पत्नी का प्रेम है, ये गुरु शिष्य का प्रेम है, ये भक्त भगवान का प्रेम है, तो बताने की बात है। बाकी प्रेम तो प्रेम होता है, उसमें ऊंच नीच का कोई संबंध देखा जाता। इसलिए भक्ति में विनय रहता है, जबकि प्रेम में कभी कभी विनय नहीं देखा जाता। तो लोगों को भी चित्र लगता है कि ये क्या बात हुई, ये तो गुरु है, ये शिष्य है, दोनों के बीच में ऐसा व्यवहार क्या करता है, समझ में नहीं आता लोगों को। जैसे 201 पत्र में क्या लिखेंगे, 201 में देखो, वो भी प्रेम पत्र है। क्या है 201 वाला जो है ना, वो आप अच्छा प्रेम पत्र है। ओ गोपांग ना करें, अचल प्रेम से कोई ग्राहक हो, कोई माधव लियो, कोई माधव लियो। भागवत का दृष्टांत लिया है श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का। उसमें क्या लिखा था, पैराग्राफ में कि आपकी हमारे पर कृपा वर्तो, ज्ञानियों और आपके, पहले पैराग्राफ में तीसरे पंक्ति, ऐसे ज्ञानियों की और आपके हमारे ऊपर कृपा वर्तो। शिष्य के गुरु पर कृपा वर्तो क्या है, क्या बात है, ये व्यवहार किस टाइप का, किस प्रकार का व्यवहार है। हा? हम तो तुम्हारी शरण है, क्या लिखा है, क्या गुरु चरण भी होता है शिष्य के, और तीनों का यही प्रेम की किसकी भक्ति के लिए लिया है, तीनों का यही प्रेम की निरंजन देव के प्रति हमारी याचना है, ऐसा प्रेम बना रहे हैं हमारे आपस में, यही हम भगवान के पास याचना करते हैं। तो आपस में प्रेम था, उसमें ऊंच नीच का संबंध देखा नहीं गया। वो मेरे शिष्य है, ऐसा मैं कैसे लिखूं, हाँ गुरु शिष्य का भेद रहा तो प्रेम नहीं रहा। क्या, जहां पर संबंध का भेद रहा तो प्रेम नहीं रहा, जहां प्रेम होता है वहां पर संबंध का भेद नहीं रहता है। उसको कहते हैं ऐक्य भाव। क्या कहते हैं उसको, 230 पत्र में उसको ऐक्य भाव कहा है, ऐक्य भाव था। देखो पहले तो ये समझो कि भक्ति अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। जहाँ विनय की औचक की बात चली है 254 पत्र में, वहाँ भक्ति का प्रकरण चल रहा है, प्रेम का नहीं चल रहा है। सही समझ में, यही तो हमने पहले कहा होती भी है, हाँ ये कभी कभी गड़बड़ होता है, वो प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं है। वो आप कहेंगे लेकिन जगत के जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वंदन करता है, पूजा करता है, पद बनाता है, पद गाता है और बहुमान करता है, तो उसको भक्ति नहीं है, ऐसे लोग तो नहीं मानेंगे, खुद भी नहीं मानेगा, पर जगत भी, वो खुद भी कहेगा कि मैं भक्ति करता हूँ और सारा जगत भी कहेगा कि ये भक्ति करता है और बहुत बहुत भक्ति करता है, क्योंकि समर्पण भी करता है वो, भक्ति के साथ साथ तन मन धन का समर्पण भी हाँ करता है। तो बात तो अलग अलग हुई कि नहीं हुई जो भक्ति प्रेम रूप होती है वो यथार्थ होती है। देखो भक्ति के कई प्रकार है, सबसे भक्ति का एक आर्टिकल लिखा है ना, भक्ति के कई प्रकार है, व्यवहार भक्ति, निश्चय भक्ति, पराभक्ति, आश्रय भक्ति, निष्काम भक्ति, योग भक्ति, सकाम भक्ति, कई प्रकार के भक्ति होते हैं। प्रेम में प्रकार नहीं होता है, प्रेम भक्ति होती है, प्रेम भक्ति होती है, वो भक्ति के प्रकारों में एक प्रकार है, लेकिन प्रेम में प्रकार नहीं होता है। भक्ति के इतने 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 प्रकार है, प्रेम के कोई प्रकार नहीं है, ऐसी बात है। तो ये दो बात अलग अलग है, अन्य होने वाले परिणाम का निषेध नहीं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो जो द्वेष हुआ वहां प्रशस्त द्वेष हुआ, वो अगले के दोष के प्रति द्वेष हुआ है, अगले के आत्मा के प्रति नहीं हुआ है। जबकि ऐसा नहीं होता, प्रशस्त द्वेष नहीं होता, संसार का द्वेष होता है तो उसके आत्मा के प्रति द्वेष हो जाएगा, क्योंकि यहां ऐसा नहीं होता है। दोष का निषेध है, आत्मा तो भगवान आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है, उसका उसके प्रति द्वेष आया तो वो अज्ञान हो गया। तो भी दोष के प्रति है, आत्मा के प्रति नहीं। इसका सबूत क्या आप ये पूछ सकते हो? क्या आप ये पूछते हो इसका सबूत क्या? कि मानो एक जीव ज्ञानी पुरुष का विरोध करता है, निंदा करता है, विरोध करता है, गालियां देता है, कुछ भी करता है, वही जीव ज्ञानी पुरुष को बंधन करने को आएगा ना, तो उसकी निंदा के प्रति जिसको अणगमा हुआ, द्वेष हुआ, वो नाचने लग जाएगा, कह रहे भगवान तू भी मेरे भगवान के चरण में आ गया क्या, उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। पर आत्मा के प्रति अगर द्वेष हो गया ना, तो उनको इस नजर से देखा, देखो ये आया, उसको तुम्हें आने ही मत दो, तो बोल दो उसका तुम्हारा काम नहीं है इधर, तुमको इधर नहीं आना है, निकल जाओ यहां से, ये बात हो जाएगी। और आत्मा के प्रति होगा, अरे उसका दोष चला गया लगता है, दोष के प्रति मुझे अणगम आया था, वो दोष चला गया, वो तो इधर प्रणाम करने को आए, उसका आदर करो, उसको माथे पे बिठाओ, माथे पे बिठाओ उसको, आप उसको माथे पे बिठाएगा तो वो अगर नहीं पलटेगा, पलट करके आया होगा तभी पलट जाएगा, शायद नहीं पलटा हो, भूल से आ गया होगा तभी पलट जाएगा। अरे मैंने इतना गालियां दिया, इतना निंदा किया, इतना गड़बड़ किया, फिर भी ये लोग मेरा इतना आदर करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने भले लोग हैं, वाकई कोई सत्पुरुष उन लोगों को मिला है, वरना ऐसा नहीं कर सकते, जगत के जीव तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो सत्पुरुष वाले ही ऐसा कर सकते हैं, तो वो बदल जाएगा। तो उसका क्वालिटी अलग है, तो ये इसका सबूत है कि उसको द्वेष के प्रति निषेध आया है, आत्मा के प्रति देखिए इनकी जिम्मेवारी इनके ऊपर है, इसने तो अपना धर्म बजाया है। ऐसा है कि एक ही जगह से सद्गुण और दुर्गुण निकलते हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। अगर कोई ज्ञानी आत्मा का स्वरूप का बोध देता है, निश्चय स्वरूप का, तो कोई निश्चयावासी भी हो जाता है, क्या करें। वो ज्ञानी व्यवहार सिखाते हैं कि देखो कोई भी नहीं व्यवहार ऐसे होते तो कोई व्यवहार भाषे हो जाते हैं। तो कहीं से भी कोई भी उपदेश दो, कोई भी बात करो, छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे भी इसकी योग्यता, क्या उपदेश देना बंद कर दें। ये तो भगवान की वाणी है, ऋषभदेव भगवान की वाणी गिरी एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले, तो 363 अन्य मत निकले यहाँ से, इससे पहले तो अन्य मत थे ही नहीं। दूसरे जीवों का कल्याण होने वाला है इसको सामने रखना है। दूर तो वैसे दूर ही है, जाने वाने क्या क्या, दूर तो है ही और दूर जाएंगे तो उसमें तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जिसका एक का भी कल्याण होता है इसका कोई मूल्यांकन हो नहीं सकता। खुद को नुकसान पहले होता है, अगले को तो नुकसान होगा नहीं होगा ये हमारे परिणाम की बात हाथ की बाजी नहीं है। तो ये शत्रु मित्र में भेदभाव नहीं है, ये परिणाम है ज्ञानी पुरुष के, उसमें बहुत सी बातें हैं कि कैसे ये परिणाम हुआ, ये अलौकिक परिणाम है जिसमें शत्रु मित्र का भेदभाव रहता नहीं चला जाता, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्यों कि मुंह के सामने मिठाई का कवर आया ये सबको अच्छा लगता है, अनुकूलता सबको अच्छी लगती है, क्योंकि वितरागता में वो बात नहीं है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, ये अलौकिक बात है। और भी बातें हैं उसमें कर लेंगे समय। हाँ नहीं
Oh,